السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر عید سے ہم کو مالا مالا فرمایا اور عید کی عبادات کو، مناسک کو، قربانی کو ادا کرنے ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ عبادت ادا بھی ہوں گی. یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جس کی تفصیلات واقعی کی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ایسا عجیب عمل اور ایسی عجیب قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمائی کہ دنیا اس طرح کی نظیر دوبارہ پیش نہیں کر سکی، جس واقعے میں بہت سارے پہلو ہمارے لیے عبرت کے ہیں، نصیحت کے ہیں، موعظت کے ہیں. اگرچہ کہ قربانی کا سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد پیدا ہوئی، قربانی تب سے شروع ہو گئی تھی. اس زمانے میں قربانی کے طریقہ کار الگ تھے، کیفیت اس کی الگ تھی، پہچان اس کی الگ تھی، طریقہ اس کا الگ تھا. پہلے زمانے میں قربانی جو ہوا کرتی تھی، اس میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی چیز اس کی قربانی دینی ہوتی تھی تو اس کو کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے خاص قسم کی آگ اترتی تھی اور اس کو، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتی، تو وہ آگ اس کو جلا دیتی، کھا جاتی، اور جس کی قربانی منظور نہیں ہوتی تو اس کو وہ آگ چھوتی بھی نہیں. تو اس سے سمجھ میں آ جاتا تھا، اور بڑی رحمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت، کس کی قربانی قبول ہوئی وہ بھی معلوم ہو جاتا تھا، کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ بھی معلوم ہوتا تھا. پہلے یہ سلسلہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں لڑائی ہوئی، جب اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑے کے اسباب کیا تھے، اس کے اختلاف کیا، وہ اختلاف کا سبب کیا تھا، اس کی تفصیلات ہیں. بہرحال ہوا جھگڑا، اس زمانے میں اصل میں بہنوں سے نکاح جائز تھا، تو اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی اصل میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ ایک ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی. اللہ پاک نے یہ ترتیب بنائی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو جب دوسری اولاد ہوئی تو اس وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی. نکاح کی ترتیب ہوتی یہ تھی کہ بھائی جس بھائی، یعنی جس جو لڑکی جس بھائی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو اس کا نکاح دوسرے بھائی سے ہوتا تھا، اور اس بھائی کے ساتھ جو لڑکی بھی ہے اس کا نکاح اس پہلے والے بھائی کے ساتھ ہوتا تھا. ترتیب یہ تھی کیونکہ انسانیت کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا، نکاح کریں گے تو کس سے کریں گے. تو اس زمانے میں اس طرح بہنوں سے نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا تھا، مجبوری بھی تھی. بعد میں پھر یہ رشتے حرام ہو گئے، بہنوں سے نکاح حرام ہے، سلسلہ رشتوں کا سلسلہ چل پڑا. تو اختلاف بہن میں ہوا تھا کہ نکاح میں کروں گا. تو بہرحال وہ درست نہیں تھا. تو بڑا بھائی قابیل تھا، چھوٹا بھائی حابیل تھا. तो बड़े भाई ने कहा कि अगर शादी तो ऐसा करेंगे कि अल्लाह के बारगाह में कुर्बानी पेश करेंगे हम लोग, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो निकाह कर लेगा और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी वो निकाह नहीं करेगा। तो कुर्बानी पेश की इन लोगों ने, तो हाबीन ने कुर्बानी के लिए मेंढा रखा था उस वक्त जो हम ज़बह करते हैं आज, और काबिल ने कुर्बानी के लिए अनाज वगैरह जो ज़मीन से उगता है वो रखा था। दोनों खुले मैदान में रख दिए, दोनों की कुर्बानी सामने मौजूद है, आसमान से आग आई और मेंढे को उठा कर लेकर चली गई। तो काबिल हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई वो तो वहीं आग छोड़ दी थी। उसने कहा कि नहीं, पर पहले बात इस पर मौकूफ थी हो कि जिसका सदका कबूल हो गया वो निकाह करेगा, लेकिन उसका कबूल नहीं हुआ तो उसने कहा कि नहीं बात अब बढ़ जाएगी। तो होता यही है आदमी के, जब अमल करना नहीं होता है, मसले का हल नहीं होता है तो लड़ाई पर मारपीट पर उतर आता है। तो उसने कहा कि मैं तो उसका कत्ल करता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने इस वाक़े को बयान फरमाया। तो काबिल ने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो छोटा भाई है ये उस मौके पर कह रहा है कि मेरी तरफ आप जो है ना कत्ल के लिए हाथ मत बढ़ाइए। बड़ा अजीब व गरीब वाकया है। लेकिन बसत इलैया मा आना बेबासिंग, अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे तो मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है आप कर लें। अल्लाह के कुछ फरमानबरदार बंदे ऐसे भी होते हैं, जान जा रही है लेकिन बड़े भाई का एहतराम, रिश्ते का एहतराम, अख़ुव्वत का एहतराम इस दर्जा पाया जाता था। तो बहरहाल कुर्बानी असल में बात जो मैं अर्ज कर रहा था यहाँ से चली हूँ, उसने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद परेशान भी हो गया, फिर कत्ल करने के बाद परेशान भी हो गया कि मार तो दिया मैं क्या करूँ इसको, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस मौके पर एक कौवे को भेजा, कौवे के जरिए मौत को समझाया कि भाई आदमी के मरने के बाद उसको क्या किया जाता है। लबा फरमाते हैं कि भबात, कौवे को भेजा, कौवा आया, ज़मीन खोदा, एक कौवे को दूसरे कौवे को जो है ना जो मर चुका था उसके अंदर डाल दिया, मिट्टी डाल दी, तो उसको समझ में आया फिर कि तदफीन इस तरह होती है आदमी के मरने के बाद। तो अपने भाई को उसने दफन कर दिया। बहरहाल ये एक लंबा चौड़ा किस्सा है जिसको अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। तो कुर्बानी का सिलसिला तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हो चुका था और ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कैफियतें उस ज़माने में अलग थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से एक ख़ास पहचान और ख़ास कैफियत के साथ ही कुर्बानी का सिलसिला मशरू हुआ और आज तक जारी है कि बेटे की कुर्बानी उन्होंने पेश की थी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में, मामूली कुर्बानी नहीं थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे, उनकी सीरत से, उनके वाक़यात से जो सबक मिलता है, बहुत बड़ा सबक यही मिलता है कि इंसान अपने जज्बात की, अपने ख्वाहिशात की, अपने इरादों की अल्लाह के हुक्म के खातिर कुर्बानी दे दे। अजीब व गरीब अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम वक्तन फवक्तन उनसे मुतालिक होते रहे। पहले हुक्म हुआ घर छोड़ने का तो घर छोड़ दिया, बाप को छोड़ने का हुक्म हुआ बाप को छोड़ दिया, घर को छोड़ने का हुक्म हुआ घर छोड़ दिया, मुल्क को छोड़ने का हुक्म हुआ तो मुल्क को छोड़ दिया। अल्लाह ने आखिर में यह हुक्म फरमाया कि बीवी को छोड़ दो। तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को उन्होंने मक्के मुकर्रमा में, उस वक्त कोई आबादी वहां पर नहीं थी, बिल्कुल घास नहीं थी, कोई साया नहीं था, अलबत्त एक दरख्त रिवायत के अंदर मिलता है कि वहाँ मौजूद था, उसके अलावा दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं था। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो बस छोड़ दिए। ये सबक मिलता है अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों से कि हुक्म इलाही की तामील, अजीब व गरीब उनके किस्से हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। खतरा के बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सही बुखारी में रिवायत है खतने का हुक्म दिया। उस ज़माने में खतने का रिवाज नहीं था, तो जैसे ही हुक्म आया फौरन गए, और ये जो लोहार होता है, बढ़ई होता है, तो बढ़ई के पास जो बसोला होता है जिसके ज़रिए वो लकड़ी को छीलते हैं, जिसके ज़रिए कारीगरी करते हैं, नक्शो निगार करते हैं, उसको लिया, लेकर खतना कर लिया उन्होंने। अब तकलीफ़ हो गई तो अल्लाह तबारक व ताला से कहा या बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई हमने हुक्म दिया था खतना करने का और तुमने फौरन ही तक, यानी बगैर पूछे कि भाई कैसे खतना करना है, क्या जरिया इख्तियार करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उसके पूछे बगैर तुमने खतना कर डाली, अब तकलीफ झेल रहे हो तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, आपका हुक्म आने के बाद उसमें ताखिर मुझको गवारा नहीं है, अब उसके बाद पता नहीं कैसे करना है, क्यों करना है, कैसा करना है, नहीं बस अल्लाह के हुक्म की तामील होनी है बस। पूरी ज़िंदगी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात में अगर आप देखेंगे तो यही मिलेगा। जैसे हुक्म इलाही आ गया फौरन निकल गया उसके तामीर के लिए, हजरा को छोड़ दिया उस मैदान के अंदर। जा रहे हैं वो पूछ रहे हैं हजरत हाजरा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो कोई जवाब नहीं, कहाँ जा रहे, पलट कर चले गए, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। तो वो समझ गई कि भाई कोई ना कोई हुक्म अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आया है। तो वो भी जाहिर सी बात है, नबी की अहलिया हैं जो जो मुतहरा हैं। तो कहने लगी कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह हमारा कभी हा था, क्या अल्लाह ने इस चीज़ का आपको हुक्म दिया था? तो फरमाने लगे कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो इतने हाजरा हैं उस मौके पर ये इरशाद फरमा रही हैं, वो कह रही हैं कि तब तो अल्लाह हमको जाया नहीं करेगा, अल्लाह का हुक्म है तो आप जा सकते हैं, हम रहने के लिए तैयार हैं, आपकी जुदाई की बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, कि जहाँ पर पानी पीने के लिए खतरा नहीं है, जहाँ पर रहने सहने के लिए कोई मकान कोई छत नहीं है, जहाँ खाने पीने का कोई नज़म मौजूद नहीं है, अल्लाह का हुक्म है तब तो हमको रहना है। इतने हाजरा की ज़िंदगी को आप देखें, यही बात आपको मिलेगी, हुक्म इलाही आ गया है तो उसके लिए तैयार हो गए, अल्लाह का हुक्म आ गया तो तैयार हो गए, अल्लाह हमको ज़ाया नहीं करेंगे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों को छोड़कर पहाड़ की ओट में हो गए, तो उस मौके पर दुआ फरमाई कि रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون। पूरी दुआएं उनकी हैं। फिर तो बीवी वक्त आया बीवी को छोड़ने का, तो बीवी को छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद जब बेटा और ये औलाद भी जो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इस्माइल की शक्ल में अता फरमाई थी, मुफस्सिरीन ने लिखा है एक कौल तो यह है कि 90 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने अता फरमाई, और एक कौल यह है कि 83 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने औलाद अता फरमाई, यानी बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई, जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, कल्बी ताल्लुक बहुत ज़्यादा था। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, चलने फिरने के काबिल हुआ, भागने दौड़ने लगा, ऐसे मौके पर बाप को बच्चों से उम्मीदें वाबस्ता होती है, उनका चलना फिरना अच्छा लगता है, बाप का सहारा बनने लगता है, बाप की उम्मीदें जागने लगती है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म आया कि उसको ज़बह करना है। और हुक्म भी ऐसा है कि अल्लाह पाक ने सराहतन हुक्म नहीं दिया कि जाओ अपने बेटे को ज़बह करो, अल्लाह ने ऐसा हुक्म नहीं दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने ख्वाब दिखलाया, पहले दिन ख्वाब को देखा कि भाई अपनी औलाद को ज़बह कर रहा हूँ, इन्नी अरा फिल मनाम, ख्वाब में देख रहे हो, पहले दिन देखा ज़बह कर रहे हैं, सुबह में उठे थोड़ा सा ख्याल ये होने लगा कि ये हुक्म इलाही है या ऐसे ही ख्वाब है, इसलिए उसको 8 तारीख को यौम तरबिया कहा जाता है, जिसमें थोड़ा सा तरद्दुद था। दूसरे दिन फिर वही ख्वाब के बेटे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 3 दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा मुसलसल के ज़बह कर रहा हूँ, तो दूसरे दिन देखा कि ज़बह कर रहा हूँ तो समझ गए कि हुक्म इलाही है, तो इसलिए 9 तारीख को यौम अरफा कहा जाता है, अरफे के माने पहचानने के आते हैं। उसकी एक वजह उलमा ने यह जिक्र किया है कि इस दिन को यौम अरफा क्यों कहा जाता है, तो 9 तारीख को वो समझ गए कि अल्लाह ही का हुक्म है। फिर ख्वाब देखा कि ज़बह कर रहा हूँ, तो 10 तारीख को लेकर ज़बह करने के लिए निकल पड़े, जिसको हम यौम नहर कहते हैं, कुर्बानी का दिन। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, बेटे को लेकर निकल पड़े ख़त्म ज़बह करने के लिए, और वो भी ख्वाब में अल्लाह तबारक व ताला ने बताया। आदमी अगर चाहे तो ऐसे मौके पर बहुत सारी तावीलात ढूंढ लेता है, हीले बहाने बहुत सारे मिल जाते हैं उसको कि भाई ऐसे ख्वाब पड़ा होगा, अल्लाह ने कहा तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे पहलू हैं इल्मी एतबार से जो गौर करने के हैं। उसमें एक तरफ इस बात की इस जानिब भी इशारा है ख्वाब के जरिए कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब होता है वो भी वही होता है, वो अम्बिया के ख्वाब वही होते हैं। हज़रत इब्राहिम समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से वही है, उस कर रहा है। और इसमें असल में इस जानिब भी इशारा मकसूद था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में इताअत खुदावंदी का जज्बा किस तरह, कैसे अल्लाह के अहकाम की तामील वो करते हैं, कि मंशा इलाही को समझ कर, इशारा इलाही को समझ कर उसे तामील के लिए निकल पड़ते हैं। और ये चीज़ चाहिए, आदमी इशारों का मुंतजर रहे, ये नहीं कभी सरी हुक्म देने पर जो है किसी काम को करने के लिए आगे बढ़े, नहीं, मंशा समझ जाए, मंशा समझ कर उसके तामील में लग जाए, शरीयत का मंशा क्या है, अल्लाह का मंशा क्या है, रसूलुल्लाह का मंशा क्या है, इस्लाम का मंशा क्या है, दीन का मिजाज और मंशा क्या है, समझ गए। सरी हुक्म नहीं आया, ख्वाब देखा, औलाद को दुआ करने के लिए निकल पड़े, तो आए हैं, अब बेटे को साथ लेकर निकले, और बेटे से कह रहे हैं पहले से ही, उलमा ने लिखा है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहिम ने जिक्र किया अपने ख्वाब का, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फ़ंज़ुर माज़ा तरा, बेटे मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ ख्वाब में, तुम्हारी क्या राय है? तो तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने यहाँ इनका सवाल करने का जो मकसद था, तो वो मकसद ये नहीं था कि औलाद अगर चाहेगी तो ज़बह करूँगा, ये नहीं चाहेंगे तो नहीं ज़बह करूँगा, मकसद ये नहीं था। उसके मकसद में उलमा ने बहुत सारी वजूहात लिखी हैं। एक वजह यह भी है कि अगर पहले से कुछ तरद्दुद हो, जहन साजी ना हो, एक तो यह है कि जिक्र करने से जहन साजी हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, पता ही ना हो और ले जाकर मैदान के अंदर अगर ज़बह करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि परेशानी की बात हो जाएगी। तो जहन साजी के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिक्र कर दिया। और एक वजह यह भी है कि बाद दफ़ा तरद्दुद होता है तो पहले से उनको समझाया जाए ताकि अल्लाह के इस हुक्म की तामील के लिए वो तैयार हो जाएं। और मंशा असल में इसका भी यही था कि हुक्म खुदाबंदी की तामील में आसानी हो, बस कोई और मंशा नहीं था, अल्लाह के हुक्म की तामील में आसानी हो, उसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो, उसमें किसी किस्म की ताखीर ना हो, उसमें किसी किस्म के जो है हीले बहानों के जरिए जो है उसकी तावील करके उसको मुअख्खर न किया जाए। तो वो भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है, इमामुल अम्बिया के वालिद मोहतरम हैं, जद्द अमजद में आते हैं। जवाब में उनका वही था, फरमाने लगे, कितनी उम्र है आप अंदाज़ा लगाइए, 8-10 साल की उम्र में या 12-13 साल की उम्र, मुफस्सरीन के अकवाल के बकौल। उस उम्र में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि बेटे मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ और ख्वाब में मैं देख रहा हूँ, तो वो फरमाते हैं कि या अबत फ़अल मा तुमर सतरीदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन। ए अब्बा जाना, आप वो काम कर जाइए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। हुक्म नहीं था लेकिन समझ गए ख्वाब के जरिए कि यह हुक्म इलाही है। कैसी फिरासत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाई थी, कैसी ज़हानत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाई थी। और फरमा रहे हैं कि सतरीदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, कि अन करीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, यानी सब्र करने वाले तो दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं, मैं भी एक बंदा ऐसा हो जाऊंगा जो सब्र कर पाऊंगा इंशाअल्लाह। वो आपको भी तसल्ली दे रहे हैं, वो खुद इस उम्र में अपना यानी अपने आप के ज़बह होने पर तैयार है अपने वालिद के हाथों। इसमें ये देखें आप कि अल्लाह के हुक्म की तामील वालिद में भी कैसी है और औलाद में भी कैसी थी, एक जज्बा कैसा था इताअत इलाहिया का, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की अहमियत उन हजरात की नज़र में कितनी ज़्यादा थी। अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम हैं, उनकी सिफात ऐसी ही होती हैं, हुक्म इलाही का जज्बा, इताअत इलाही का जज्बा ऐसे ही होता है। तो बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले गए, कुर्बानी कर दी। और वो भी अजीब गरीब तारीखी यानी रिवायात अगर आप देखेंगे तो बेइख्तियार आपके आंसू बह पड़ते हैं कि जो वाकयात उस वक्त पेश आए, शैतान भी रोकने के लिए आ गया, एक एक मरतबा नहीं 3-3 मरतबा रोकने की कोशिश करने लगा। और आज जो कंकरियां मारी जाती हैं तो वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उसी अमल की तकमील में मारी जाती हैं कि जब वो आकर उनको बहकाने लगा, वसवसे डालने लगा और अल्लाह के उस हुक्म की तामील में बहाने जो है ना ढूंढवाने लगा, किसी ना किसी तरह वो कोशिश कर रहा था कि ये ज़बह करने का अमल रुक जाए, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियाँ मारकर उसको भगा दिया था। तो 3 मौके पर वो आया तो 3 मरतबा उन्होंने कंकरियां मारकर उसको भगा दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने वो अमल भी हज के मौके पर आज जारी रखा है, बाकी रखा है। चुनांचे अपने ले गए वो ज़बह करने के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। और रिवायात में यह है कि हज़रत इस्माईल उस मौके पर कहने लगे वालिद से, एक तो इन बहुत सारे बातें हैं भाई बाप और बेटे के दरमियान में, एक तो खुद उन्होंने दरख्वास्त की थी कि भाई मुझे सीधा न लिटाइए, आप दाएं पहलू पर लिटाइए या उल्टा लिटा दीजिए। फलम्मा असलमा वतल्लहू लिलजबीन, अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए दोनों तैयार हो गए और हुक्म के हम के हुक्म के आगे अपने आप को झुका दिया। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी पेशानी को ज़मीन के करवट के बल लिटा दिया। हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माईल को करवट के बल लिटा दिया, ज़बह कर रहे हैं, कोई आदमी तसव्वुर करे इस मौके पर, किसी को इतनी हिम्मत है कि अपने औलाद के गले पर छुरी रखे, करीब से भी अगर चुरी चली जाए तो आदमी यानी आदमी के गुस्से का आलम क्या होता है सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि गले पर छुरी रखकर छुरी फेर रहे हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि आप मुझे करवट के बल लिटा दीजिए, क्योंकि छुरी फेर रहे थे, गला कट नहीं रहा था। तो कहने लगे कि हो सकता आपकी मोहब्बत की वजह से, शफक्त पिदरी जो है, हो सकता है कि इस हुक्म खुदाबंदी की तामील में हायल हो जाए, इसलिए फरमा रहे हैं कि भाई आप मुझे करवट के बल लिटा दीजिए, मेरी माँ को सलाम पहुँचा दीजिए, मेरे कपड़ों को सीमेंट ले लीजिए, खून अगर लगेगा वालिदा देखेंगे तो उनको तकलीफ होगी, और कपड़ों को मेरे उन तक पहुँचा दीजिए, एक मेरी निशानी एक यादगार के तौर पर उनके पास रहेगी। तो बहरहाल जब ये अमल हुआ, हज़रत इब्राहिम ने लिटा दिया, गले पर छुरी फेरने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर इशारा फरमाया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन नादैना हुवा या इब्राहिम कद सद्दक्त रुया इन्ना कदालिक नजिल मुहसिनीन। जब करने लगे तो फरमाया कि इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, अल्लाह ने फरमाया कि हमने आवाज़ दी उनको, अरे सद्दकता रुया, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है। इन्ना कदालिक नजिल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को इसी तरह बता देते हैं। फिर हजरत इब्राहिम की जो बशारतें हैं आगे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह साफ़ात में बयान फरमाई। तो अगर इस वाक़े से जो असल मकसद है जो हमको समझने का है वो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी की पूरी हयात तय्यबा अगर आप देखेंगे तो ईसार और कुर्बानी से भरी हुई मिलती है, और उससे एक पैगाम वो उम्मत को ये देते हैं और हमको ये लेना चाहिए कि ज़िंदगी के जिस मोड़ पर अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म जब आ जाए तो उस मौके पर आदमी उस हुक्म की तामील में जो कुर्बानी दे सकता हो कुर्बानी दे दे, हत्ता कि अगर जान का नजराना पेश करने की ज़रूरत पड़ जाए तो जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहे। यह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का सबक है। औलाद की कुर्बानी देनी पड़ी तो देनी पड़ेगी आपको, ज़बह करना पड़े तो पड़ेगा। असल में ये जो ज़बह हम करते हैं तो ये असल में औलाद का ज़बह करना है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है हम पर कि असलन तो जान पेश करनी थी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बदले में जानवर को रख दिया, वरना तो हुक्म इलाही असल में जान को पेश करने का था। तो वाकई से असल में बताना मकसूद यही है। वहीद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया भी है, घर बार छोड़ने के, अगर अल्लाह के हुक्म की तामीर के लिए घर को छोड़ने की ज़रूरत पड़े तो घर छोड़ना पड़ेगा आपको। बीवी बच्चों को छोड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा, अपने वालिद को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, हुक्म हुआ कि बीवी को छोड़ दो तो बीवी भी छोड़ दिए। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा इम्तिहान दिया जिसका कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जिक्र फरमाया, इन नहादा लहुल बलाउल मुबीन, यानी अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि बेशक ये बहुत बड़ा इम्तिहान था जिससे हमने उनको गुजारा है। कई ताकीदों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने यह जुमला इरशाद फरमाया, इन नहादा लहुल बलाउल मुबीन। इन्ना की ताकीद अलग है, लाम की ताकीद अलग है, जुमला इस्मिया है उसकी ताकीद अलग होती है। अरबी जबान का एक मुहावरा होता है, लेकिन जानते हैं इस बात को, अल्लाह ने ताकीद से भरपूर यह जुमला इशार फरमाया कि बहुत बड़ी आजमाइश थी। आप अंदाजा लगाइए कि आप खुद अपने औलाद को ज़बह करने के लिए ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तैयार होते हैं, औलाद चाहे कितनी ही नाफरमान क्यों ना हो, आप घर से निकाल दें लेकिन औलाद को ख़त्म कर दें आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ हुक्म इलाही की तामीर में औलाद के गले पर छुरी फेर रहे हो। तो अल्लाह ने फरमा दिया, इन हादा लहु अल बलाउल मुबीन, व फदीना हु बिदिबिन अज़ीम, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, सलाम अला इब्राहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने सलामती की दुआ फरमा दी, और क़ियामत तक के लिए ये सिलसिला और ये सुन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने जारी फरमा दी। और आज ये उनकी सुन्नत है। आज देखें दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों जानवर जब ज़बह हो रहे हैं तो पूरा का पूरा सवाब सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक को पहुँचता है। एक जानवर की कुर्बानी उन्होंने पेश की है, अपनी औलाद की कुर्बानी पेश की, अल्लाह ने यह अदा को इतनी पसंद फरमाया, इतनी पसंद फरमाया कि आज अरबों खरबों जानवर पूरी दुनिया में कट रहे हैं, ज़बह हो रहे हैं, उसका सवाब सीधा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहुँचता है। तो बहरहाल ये कि उनकी ज़िंदगी का सबक है, ये कि उनकी सीरत का सबक है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने जज्बात की कुर्बानी करने के लिए तैयार रहे, अपने इरादों की कुर्बानी करने के लिए, यानी हुक्म इलाही के लिए, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए उसके लिए जिस किस्म की कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। अपने नफ्स की कुर्बानी हो, अपनी औलाद की कुर्बानी हो, अपनी जान की कुर्बानी हो, अपने माल की कुर्बानी हो, एक सबक उनकी ज़िंदगी से हमको मिलता है, उनकी तालीमात से और उनके वाक़े से मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तरीक़े नमाज आप एक मरतबा समाअत फरमा लें, इंशाल्लाह उसके बाद नमाज अदा करेंगे, क्योंकि साल में एक मरत दो मरतबा नमाज अदा की जाती है ईद की, तो इसलिए याद दहानी जो है बेहतर होती है। तरीक़ा उसका यह है कि अवलन नीयत हमको करनी होती है, और नीयत दिल के इरादे का नाम है, और दिल का इरादा हम यही करके आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दो रकात वाजिब ईद की नमाज अदा कर रहे हैं ज़ायद 6 तकबीरों के साथ। तो बस यही हमारी नीयत काफ़ी है। तरीक़ा उसका यह है कि 6 तकबीरें ईद की नमाज में ज़ायद होती हैं, 2 रकात पढ़ी जाएंगी, 6 तकबीरात उसके अंदर होंगी। पहली रकात में 3 तकबीरात होंगी, दूसरी रकात में 3 तकबीरात होंगी। पहली रकात में 3 तकबीरात सना के बाहर किरत शुरू करने से पहले होंगी। सबसे पहले तकबीर तहरीमा कही जाएगी, अल्लाहु अकबर, आप हाथ उठाएंगे, हाथ बांध लेंगे और दुआ पढ़ेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मिक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। तो ये तो तकबीर तहरीमा हो गई। उसके बाद 3 तकबीरात होंगी जो ज़ायद तकबीरात होती हैं। तो ये 3 तकबीरात में से पहली तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे और हाथ छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे और बांध देंगे। तो तकबीर तहरीमा को मिलाकर ये 4 तकबीरें हो जाती हैं पहली रकात में। उसके बाद सूरह फातिहा होगी, फिर सूरत पढ़ी जाएगी, रकात को मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी रकात में यानी नॉर्मल तरीके पर उसको अदा किया जाएगा। पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद सूरत पढ़ी जाएगी। अब तीन तकबीरात जाहिर होंगी। पहली तकबीर होगी अल्लाह अकबर, हाथ उठाएं हाथ छोड़ दें। दूसरी तकबीर होगी अल्लाह अकबर, हाथ उठाएं हाथ छोड़ दें। तीसरी तकबीर होगी अल्लाह अकबर, हाथ उठाएं और हाथ छोड़ दें। चौथी तकबीर या रुकू की तकबीर होगी, अल्लाह अकबर, हाथ उठाए बगैर आप तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाएं। उसके बाद नमाज मामूल के मुताबिक अदा की जाएगी। नमाज के बाद दुआ होगी, खुतबे के बाद दुआ नहीं होगी।